प्रातः क्लास चल रहा था, दो छ 1966 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। ये आकाशुर बकासुर वगैरह वगैरह जो भागवत में कहा है, इस समय की बात है संगम की। कैसे कैसे असुर, अकासुर, अक की तरह ग्लानी की दुर्गंध छोड़ने वाले, ऐसे ऐसे असुर, बकासुर, बक बगुले को कहा जाता है, बगुला मरी हुई मछलियों को भी खा जाता है। ऐसे जो बगुले के स्वभाव वाले हैं, देखने में आते हैं एक टांग पर बड़ी तपस्या में खड़ा हुआ है, और जैसे ही मछली मरी हुई आती है गप कर लेता है। तो ये भागवत में कहा है गीता में नहीं, पहले गीता ज्ञान आता है, फिर गीता ज्ञान से आकर्षित होकर के जो गोपियां भागती हैं तो भागवत बन जाता है। और उन गोपियों के पीछे जिनकी कुदृष्टि रहती है, वो ग्लानी करने लग पड़ते हैं। भागवत में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, और ये भागवत इस समय की बात है जब भगवान बाप आते हैं। तब भगवान के साथ जिन आत्मरूपी गोपियों ने रुक्त संबंध जोड़े हैं, और ईश्वर के ईश्वत्व को प्राप्त किया है राजयोग के द्वारा, ईश्वर माने ही ईश माने शासन करने वाला, शासक वर्मन श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला ईश्वर है, जो स्वयं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासक है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजा है, वही दूसरों को राजयोग के द्वारा राजा ही सिखाता है। तो राजा ही सीखने वाले जो राजघराने के जन्म जन्मांतर के भांति हैं, दुनिया में उनकी संख्या है 16,108। ऐसे तो ये संख्या त्रेता के अंत तक भी हो जाती है, परंतु वो देवता ही रह जाई थी। हम देवताओं की दुनिया के बाद सत्ययुग और त्रेता युग के बाद आसुरी दुनिया की राजाई आती है, द्वापर कलयुग द्वैतवादियों की दुनिया। उसकी भी शूटिंग यहाँ होती है संगम में। जो कहे जाते हैं कंसी धरा सिंधी, कन्याओं को कोसते हैं, शैशवावस्था में ही कोसते हैं, किशोरी अवस्था में भी कोस लेते हैं, और उनका जीवन खराब कर देते हैं। जैसे कोई कली हो और उस कली को पक्षी खोद देता है, फिर वो कली सुंदर फूल नहीं बन पाती। जरा सिंधियों के भी नाम आए हैं, जरा जीर्ण कहा जाता है पुराने को, कामसी को, और सिंधी की भारतवर्ष में सिंधियों की पश्चिमी सभ्यता है। मांस गोश्त अंडा शराब सब आते हैं। वहां जो ब्राह्मण होते हैं वो भी खाते हैं। तो हद की बात, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है जो देह अभिमान के मांस हो रहे हैं। स्वयं मांस हो रहे हैं, और सिंध के रहने वाले हैं। खून सिंध का है, ऐसे तामसी होते हैं कि भागवत में दिखाया है कि भगवान जब मथुरा पर राखी करते हैं तो आक्रमण के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। तो ये सब नाम भागवत में लिखे हुए, ये भागवत में लिखा हुआ है ना कि कृष्ण ने सदर्शन चक्र से इन सबको मारा। ये सदर्शन चक्र क्या है? स्वात्मा को कहा जाता है। आत्मा में स्वता दर्शन, आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन, और ये ऐसा दर्शन कराता है असुरों को कि उनके चेहरे ही संसार में प्रत्यक्ष हो जाते। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है अंत में सबकी कोल पर ही हो जाएगी। किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। जब ऐसा समाना होता है तो उनके गले कट जाते हैं। आसुरीपना खलास हो जाता है। देवान अलग हो जाता है और आत्मा रूपी मुंडी अलग हो जाती है। देवताओं के भी देवात्माओं के भी 84 जन्म प्रत्यक्ष होते हैं ज्ञान चक्र के द्वारा और असुरों के भी जन्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं इसी चक्र के द्वारा। तो ये कोई द्वापर युग की बात नहीं है। कंसी जरा सिंधी ये संगम युग की बातें हैं। तो संगम युग पर अभी कृष्ण कहाँ से आ गया? बंद कर दो, इसे नहीं चाहिए, उधर कर दो भाई, आवाज करता है। अभी संगम में कृष्ण कहाँ से आवेगा? कृष्ण नारायण के लिए तो कहते हैं कृष्ण नारायण वासुदेव। कृष्ण कहो नारायण कहो ये तो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। और 16 कला संपूर्ण तो सृष्टि के आदमी ही हो सकते हैं मनुष्य जिन्हें देवता कहा जाता है। द्वापर युग में 16 कला संपूर्ण कहां से कृष्ण आ गया? जो बैठ करके बोलेंगे गीता सुनाएंगे द्वापर के अंत में गीता सुनाएंगे ज्ञान सुनाएंगे। अब ज्ञान से तो सदगति होती है, फिर ये पापी कलयुग कैसे आ जाता है? ये दुर्गति में कैसे आ गए? तो द्वापर में कंसी जरा सिंधी की बात नहीं है जो शास्त्रों में लिखी है। ऐसे ऐसे कन्याओं को पोसने वाले जा सिंधी कंसी कलयुग के अंत में ही होते हैं। जब सतयुग आने वाला होता है उसे संगम युग कहा जाता है। तो द्वापर युग में कृष्ण नहीं बोलेंगे ज्ञान और न वहां असुरों को मारेंगे। itu hei sehari asli dunia. यहाँ संगम युग की बात है, जब कलयुग की दुनिया, पाप की दुनिया, सारे संसार में छा जाए, यहाँ कोई कौन बैठ करके सन्यासियों को हाथ लगा दे? उन्हें कौन बताएगा? ये कोई मारने करने की तो बात ही नहीं है कि कंसी जरा सिंह जी को मारा, वास्तव में आत्मा में जो देह अभिमान मरा हुआ होता है और देह अभिमान के आधार पर पांच विकार भर जाते हैं, उस देह अभिमान और पांच विकारों को भगवान मारता है और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। दुनिया इन बातों को गहराई से समझती नहीं है, ये बातें बाप बैठ करके बच्चों को समझाते और बोलते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प जब ये खास तुम पतित बन जाते हो क्योंकि पहले नंबर में तो तुम पतित बनते हो, तुम कह के किसकी तरफ इशारा किया है? हैं? जो सन्मुख बैठे तो ले रहे पहले नंबर में कहने का क्या मतलब हुआ? हाँ, दुनिया में जो भी धर्म ढेर के ढेर फैले हुए हैं मठ संप्रदाय, उन सब में पहला नंबर पतित बनने का तुम्हारा लगता है कलयुग के अंत में। जब ये सारा झाड़ जड़ीभूत हो जाता है तो पहले जरूर तुम पतित बनेंगे, कलयुग के आदि में द्वापर के आदि में जब सारी दुनिया जड़ीभूत हो जाती है, सारा आधार जड़ीभूत हो जाता है, तब तुम पहले नंबर में पतित बनते हो। रामायण में बोला है मैं पतित को राजा, किसने बोला? मुरली में बोला है, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने साथ में लिख दी, तो रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी। तो ये तुलसीदास की यात्रा कौन हुई? राम वाली यात्रा हुई। कलयुग के मध्यांत में आती है तुलसीदास बनकर के, जबकि बोलते रामायण नहीं बोलते भय परम शंकर सर है, माने सारे ब्रह्मा जो हैं वो भी शूद्र बन गए, ऐसी पति दुनिया 500 साल पहले ही हो गई। तो कलयुग के अंत में तो क्या हाल होगा? तुम पहले पतित बनते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा झाड़ पतित हो जाता है। नना, जो देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो पहले पहले पतित बनती हैं। जिस समय वो नंबर वन में पतित बनती हैं, उस समय जो क्रिश्चियन आदि धर्म है, अमेरिका यूरोप आदि में फैले हुए हैं, वो इतने पतित बुद्धि नहीं बनते। उनकी फिर भी पावन बुद्धि होती है, इसलिए विदेशी भगवान बाप को पहले पहचान लेते। काम से बुद्धि तो हर बात को उल्टे रूप में ही पहचानती है। तो ये मनुष्य शक्ति का ढाल माना मनुष्य शक्ति, यहाँ संगम युग में बाबा कभी कोई जानवरों की बात नहीं करते। जब क्लैरिफिकेशन देते हैं या मुरली में बोलते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली, कृष्ण ने गऊओं को चराया, गऊओं की पालना की, तो ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई जानवर गऊओं की या जानवर बंदरों की बात है। किसकी बात हुई? ह्यूमन बंदरों की बात है, ह्यूमन गऊओं की बात है। तो बाबा ही आकर के मनुष्यों को ज्ञान सुनाएंगे। तो सन्यासी विद्वान आचार्य तो शास्त्र में जानवर लोगों की बात लिख दी, भगवान ने बंदरों की सेना ली और रावण ने मनुष्यों की सेना ली, ऐसे लिख दिए। तो वो भगवान तो समझाते हैं और तुम बच्चे समझते हो कि सतयुग में ये जो इतने पक्षी वगैरह, ये शेर, ये सभी जो कुछ कचरा है, वो वहां होगा ही नहीं, क्योंकि बड़े आदमी जो होते हैं ना, आज की दुनिया में भी जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनके घर में मक्खी मच्छर जैसी दुखदाई आत्माएं होती है, दिखाई पड़ती है, है? कितनी सफाई रहती है। और तुम तो दुनिया की दृष्टि में जब रिजल्ट निकलेगा तो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े आदमी तुम हो। तो तुम्हारे लिए सतयुग में बहुत सफाई रहती है। बड़े आदमियों के जो फर्नीचर होते हैं, उनको देखो, उनके रहने का स्थान देखो, बहुतों से मनुष्यों में बड़े आदमी, जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, माथा टिकाते हैं, तो तुम तो इतने ऊंचे देवता बनते हो, तो तुम जैसे देव आत्माओं के लिए तो दुनिया के सारे वैभव चाहिए। ऐसा कोई वैभव नहीं जो तुम न भोगते हो। वहां सत्युग में मक्खी मच्छर जैसी कोई भी ऐसी चीज की चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो मच्छर है, मक्खी फलाना और उनके द्वारा फैलने वाली बीमारियां, ये बीमारियां सीमारियां, ये गटर, ये देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। कैसे कैसे नालों के किनारे, गंदे नालों के किनारे मनुष्य रहे पड़े, कोई जा करके देखे तो बंबई की तरफ और दिल्ली में जा करके देखे कैसे कैसे गंध में रहे पड़े। एक ही छोटी सी झोपड़ी में पूरा परिवार पल रहा है। गांवों में इतने गंदे नहीं होते, कहां होते गंद वाले, शहरों में होते। बड़े गांव में देखो जहां गटर है, गंद उनके किनारे में रहे पड़े हैं, जहां बिल्कुल ही गंद ही गंद। गांवों में तो कचरा इतना होता ही नहीं है, गटर आदि नहीं है, गटर लाइन होती है गांवों में नहीं, तो वो तो खुलासे गांव में होते हैं। कुछ गदर या दंड छुपा के नहीं रखते हैं जमीन के अंदर, वो तो खाली गरीब होती है। बाकी इतनी गंदगी नहीं होती है, या तो ऐसी गंदगी जहां जाओ तो कपड़ा देना पड़े। रहम आ जाएगा तुमको इनको, कपड़ा दे दे। वहां ही वो बेचारी झुग्गियों में रहे पड़े, गंदे और फटे कपड़ों में। ये गटर साफ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत मनुष्य हो गए थे, इतने मनुष्य हो गए हैं कि रहने की एकदम जगह नहीं है। और वहां सतयुग में तो तुम जानते हो कि एक एक को रहने की कितनी जगह होगी। अरे विश्व के मालिक है, रहते ही हम भारत में, और आदमी कितने शरीर में रहते, गाया जाता है, भगत भी गाते हैं, घट ही ब्रह्मा, घट ही विष्णु, घट में ही नौलख तारा। क्या मतलब हुआ है घट माने, घट माने शरीर रूपी घड़ा, बुद्धि रूपी घड़ा, ये जो मुकर्रर रहते है, सारी दुनिया का बीज है मनुष्य शक्ति का बीज। इसके लिए बोला वो ब्रह्मा में परम ब्रह्म है, विष्णु और उसकी भुजाओं में जो चैतन्य भुजाएं विष्णु को दिखाई जाती है, उनके बीच में सर्वोपरि उनके भुजाओं को चलाने वाला है। इतना ही नहीं, जो भी दुनिया में 9 लाख सितारे हैं, इंची स्टेज में चमकने वाले, वो आसमान के सितारे नहीं, धरती के सितारे, जो भगवान बाप के सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं, वो 9 लाख सितारे उस घट में समाये हुए, घट में ही 9 लाख तारा। अभी ब्रह्मा विष्णु और फिर ये सितारे, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते, तो विष्णु के साथ ये सितारे भी हैं। सतयुग में ये जब देवता बन गए हैं, देवता किसे कहा जाता है, है? देवता कम कलाओं वालों को देवता नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो तो करवा के डॉक्टर होती है। जब द्वापर जो होता है, कलयुग होता है, तो और धर्मों में कम कलाएं होने के कारण कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देवता वो है जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं। कितने हैं? 9 लाख सितारे। ब्रह्मा के दिन में भी वो सितारे और ब्रह्मा की रात में भी सितारे। तो ये 9 लाख आत्माएं जब देवता बनती है, तो बस इतने ही होते हैं नई दुनिया में, सतयुग में। आज की दुनिया की तरह 500-700 करोड़ मनुष्य नहीं होते हैं बस, क्योंकि पहले पहले झाड़ तो छोटा होता है ना, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, पहले छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा बनता है, बाद में कलयुग में वृद्धि को पाता है। तो ये बात तो बुद्धि कहती है कि बरोबर ये इतने जो अभी अति का सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, और सभी मीठी नदियों के ऊपर होंगे। नखारी सागर के किनारे होंगे और न गंध बहाने वाली नदियों के किनारे होंगे। कहाँ? सतयुग में। ये इतने जो कैनाल से निकले हुए हैं ना, नहरें, ये डैम्स बना करके और उनमें से पानी का कैनाल निकालते हैं, क्योंकि दूर दूर में देश में बस जाते हैं। तो नदियों में से बहुत कैनाल निकालते हैं। क्या कहा? हद की नदियों के नाल से की बात है, डैम्स की बात है, या बेहद की बात है? बेहद मनुष्य शक्ति के अंदर की बात है, जो बहुत ज्ञान जल का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं, वो डैम्स, और उन डैम्स में से अनेक कैनाल नहरें निकलती हैं, जिनमें ज्ञान जल बहता रहता है। कौन है कैनाल? है कौन बनते हैं डैम्स? कैनाल्स में पानी बहता रहता है और डैम्स में पानी खड़ा रहता है। तो ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में डैम्स कौन है? है अगर कुमार कुमार कन्याएं या माताएं हैं जिनका पानी खड़ा रहता है, बहुत गहरे भी होते हैं, बहुत ज्ञान जल भरा होता है, कौन होते हैं? हैं माताएं होती हैं, उनका पानी माताओं के अंदर ज्ञान जल बहुत होता है। बाप है? है कुमार, उनका पानी खारा रहता है, ज्ञान में बड़े गहरे भी होते हैं, फिर बताया उनसे कैनाल्स निकलती है। कैनाल्स माने आर्टिफिशियल नदियां, ओरिजिनल नदियां है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल नदियां कौन निकालते हैं? भगवान आते हैं तो आर्टिफिशियल नदियां निकालते हैं या ओरिजिनल नदियां निकालते हैं? भगवान आते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती जैसी ओरिजिनल नदियां बहती हैं, उनमें ज्ञान जल बहता है। लेकिन जो डैम्स बनते हैं उनमें बहुत कैनाल्स निकालते हैं, ये तो तुम जानते हो कि बहुत बहुत निकलेंगे। जब तुम सिंध में भी थे, कौन तुम माने कौन जो भी बाप के सन्मुख बैठ करके वाणी सुनते हैं, वो उनको तुम कहा, तो तुम सिंध में भी थे, माना पूर्व जन्म में कहाँ थे, सिंध हैदराबाद में थे, जिस हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी। चलो सिंध में भी थे या कहाँ भी थे, तो सिर्फ नदियों के ऊपर थोड़ी चलती है, नहीं सिर्फ नदियों से सारी जमीन को जल ज्ञान जल नहीं मिल सकता है। केनाल निकालते हैं पानी फेंकने के लिए, और यहाँ संगम युग में जब बाप आते हैं, प्रैक्टिकल में बाप जब पार्ट बजाते हैं, तो कोई कैनाल में ना सोले ही होते हैं, बाप से क्या निकलते हैं, ज्ञान सागर से नदियां निकलती हैं, पानी बहुत, और मनुष्य मुट्ठी भर। ये सतयुग की बात है, आज उनके लिए गंगा यमुना तो रहती है, बिल्कुल बड़ी बड़ी नदियां रहती है। तो नई दुनिया में रहते ही गंगा यमुना नदी के आसपास, जो नदियों के पास मीठा पानी, क्या कहा है, चाहे सतयुग में आदि में और चाहे स्वर्णिम संगम युग में, जो बाप स्थापन करते हैं, उस ब्राह्मणों के संगठन में नदियां मीठे पानी वाली होती है, कड़वा ज्ञान जल बोलने वाली नहीं होती है, खारा पानी होता है नदियों में, नहीं होता है, और सब नदियां कायदे मुझी बहती है, ऐसे नहीं कहीं बाढ़ आ जाए और कहीं नदी सूख जाए, क्योंकि पांच तत्व भी इन 9 लाख सितारों के गुलाम बन जाते हैं। कौन कौन से पांच तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, अभी गुलाम है, ये मनुष्य जनरेशन को बर्बाद करने वाले हैं, बर्बाद कर दी थी। क्योंकि मनुष्य अभी तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान मनुष्यों के शरीर भी पांच तत्वों वाले ऐसे हैं, तमो प्रधान। तो ये पांच तत्व भी तमो प्रधान होते हैं संसार में, सतयुग में ये सतो प्रधान बन जाते हैं। कैसे, कौन बनाता है सतो प्रधान है, भगवान बनाता है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह मियां ने आकाश बनाया, अल्लाह मियां ने नदियां बहाई, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया है? नहीं, ये 500 करोड़ दुनिया के तामसी वाइब्रेशन, दुनिया में जो भी 5 तत्व फैले हुए हैं उनको तामसी बनाते, उन 500 करोड़ के बीच में रहने वाले जो 9 लाख सितारे हैं, डायरेक्ट भगवान के बच्चे, वो योग बल से इतने बड़े संसार को सतोपटान बना सकते हैं? इस 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन के बीच में नहीं बना सकते। जब भगवान बाप आते हैं प्रैक्टिकल में, जिसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती, तब से तुम 9 लाख सितारे नंबर वार सतो प्रधान बनना शुरू होते। एक तरफ तुम सतो प्रधान बनते जाते हैं, दूसरी तरफ इस तामसी दुनिया का विनाश हो जाता है। तुम्हारी सतोपटन राजाई, राजधानी पूरी तैयार होती है तो ये तमोपटन दुनिया पूरी तलाश हो जाती। सब तुम्हारी योग बल के आधार पर ये 5 तत्व सतोपटन बन। क्यों? भगवान आया है तो भगवान क्या नहीं कर सकता? अरे भगवान भी नियम अनुसार काम करेगा ना। आत्मा चैतन्य है, 5 तत्व तो जड़ है। अरे मनुष्य में ही जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, जड़ी भूत बुद्धि वाले हैं, वो पहले सुधरते हैं, या चैतन्य बुद्धि वाले सुधरते हैं? तो जो चैतन्य आत्माएं हैं उनको पहले सुधारा जाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के योग्य बनाया जाता है। फिर 5 तत्वों का अंत में नंबर लगता है। तुम बच्चे 5 तत्वों को भी सतोप्रधान बना देंगे, भगवान नहीं बनाता। कैसे? तुम्हारे संगठित योग बल से जो वायुमंडल बनेगा, उस वायुमंडल में वो जड़ 5 तत्व भी चेंज हो जाएंगे। ये प्रकृति चेंज हो जाएगी। जो बाढ़ लाती है, बड़ी बड़ी आंधियां लाती है, भूकंप लाती है, ये सारी प्रकृति को तुम सतोप्रधान बनाते अपने संगठित योग बल से। तो ये संगठित योग बल कब से शुरू होगा है? है? जब 500 करोड़ तामसी आत्माएं इस शक्ति से अपना शरीर छोड़ करके सूक्ष्म मंडल में जाके इकट्ठी हो जाएंगी। तब तुम्हारे संगठित योग बल से ये पांच तत्व भी सुधर जाएंगे। ये पांच तत्व तुम्हारे गुलाम बन जाते, तुम सतो प्रधान बन जाते। तो कभी भी कोई बरसात बेकायदे नहीं पड़ती है, कभी भी कोई नदी बाढ़ में आकर के उछाल नहीं खाती। जिस नदी के पानी में दे अभिमान का कचरा भर जावे, बिल्कुल साफ कायदे बुझी। क्योंकि तो दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, समने आत्मा गमने गया। जो 500 करोड़ है वो तो जाते हैं परम धाम बाप के घर में, और तुम आत्माएं कहाँ जाती हो? स्वर्ग आत्म की स्थिति में जाती हो। आत्म की स्थिति में रहने वालों का स्थान है स्वर्ग। तो जब स्वर्ग है तो सब फायदे मुजीब, और जब नरक बनता है तो सब काम बेकायदे। ये प्रकृति भी बेकायदे चलती है। तो देखो नई दुनिया में कौन राखी करते है? दो छठ की वाणी का चौथा पे। अभी जब कहते हैं 7 लाख आयु वर्ष स्वर्ग की, सतयुग की 7 लाख वर्ष आयु, तो ये स्वर्ग में राज्य कौन करते थे? जहां सतयुग की आयु 7 लाख वर्ष बता दी, अभी 2500 वर्ष की हिस्ट्री देखो मनुष्यों के पास है। 2500 साल पहले क्या स्थिति थी, और 2500 साल में अब कितने हो गए, कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? 500-700 करोड़। तो जिस 7 लाख के स्वर्ग में जो राजी करते थे, उस 7 लाख वर्ष में क्या से क्या बचा लेंगे? अरे 7 लाख वर्ष कोई स्वर्ग की राजाई थोड़ी कर सकते हैं। एक शास्त्र में बताते कितने देवताएं होते हैं, 33 करोड़, और उन्होंने सतयुग की आयु 7 लाख वर्ष बता दी, तो कितने हो जाएंगे है? उसे गिनती रहेगी। तो कितने देवताएं होती अगर 7 लाख सतयुग की आयु होती, तो देवी देवताएं होती है ना। अभी कहां देवताएं तो एकदम गुम हो गए। वो 2.5 हजार साल में ही देवताएं गुम हो गए। तो कितना गपोड़ा है शास्त्र में, बिल्कुल गपोड़ा। कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष होती है, तुम शास्त्रकारों के साथ बैठो ज्ञान की बात करने के लिए, तो ये लोग बहुत डिबेट करेंगे। ये आर्य समाज तो और ही जाति डिबेट करते हैं। जैसे मुसलमानों को कहा था ना अंग्रेजी में, ये जो देवताओं के चित्र हैं, मोहम्मद जब आए उनको फारो करने वाले मुसलमानों ने क्या किया, जो इस्लामी पहले देवताओं के चित्रों को पूजते थे, मूर्तियों को पूजते थे, मुसलमानों ने क्या किया, उन मूर्तियों को तोड़ डाला, तोड़ फोड़ देते थे। इंडिया में भी मुसलमान आए, मंदिरों की मूर्तियों को क्या किया, तोड़ फोड़ दिया। वो आज समाजियों का भी जो बड़ा था ना, जैसे मोहम्मद देवताओं को नहीं मानता, मुसलमान देवताओं को नहीं मानते, वैसे वो बड़ा दयानंद भी देवताओं को नहीं मानता था। ये आखिरी धर्म है आस्तिकों में, आधा नास्तिक आधा आस्तिक, क्योंकि भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान आकर कैसे कार्य करता है, कैसे शक्ति का संचारण करता है, ये नहीं समझा सकते। अरे आत्मा भी तो निराकार है, निराकार आत्मा साकार शरीर लिए बगैर कोई काम कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। बस ये है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पकृत बनती है सुख भोगते भोगते। परमात्मा सुख दुख नहीं भोगता क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो कभी क्षरित भी नहीं होता, सदा भरपूर है, और वो भरपूर जब इस शक्ति पर आता है तो तुम देवताओं को देवात्माओं को भी भरपूर बनाता है। जो देवताओं को नहीं मानने वाले हैं, आर्य समाज हो या नास्तिक हो, उनको भरपूर नहीं बनाता है। तो देखो ये आर्य समाजी और ये मुसलमान, ये दोनों बड़े कट्टर हैं, बिल्कुल ही कट्टर। और वो कट्टरपन भी बिल्कुल मजम ही पागलपन, महजब माने अपने धर्म की बातों को लेकर के एकदम कट्टर बन जाते हैं। जैसे मुसलमान कट्टर होते हैं, ऐसे ही आज समाजी भी मजहबी पागलपन। इसलिए आज समाजियों की लड़ाई चलती है मुसलमानों से, ये आज समाजी जो साकार भगवान और देवताओं को नहीं मानते, तो उनका मानना है सुखी दुनिया हम बनाएंगे, ये काम करने वाले हम थे, हम गुरु की संतान है, गुरु माने करने वाला, भगवान और देवताएं कुछ भी नहीं। जैसे गांधी जी कहते थे राम राज्य लाएंगे, भारत को सुखी बनाएंगे, ऐसा किया भारत सुखी हुआ और ही नरक बन गया। तो कहते हैं करते नहीं है, करते क्या है, बड़े बड़े फाइव स्टार होटल बनाते हैं, उनमें गंध खाते हैं, और कौए क्या करते हैं, कौए भी गंध खाते हैं, बहुत काव काव करते हैं, ढेर सारे कौओं की जमात इकट्ठी कर लेते हैं। कहते हैं दिल्ली को हम स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाने वाला तो स्वयं स्थिति में सदैव रहने वाला ही बना सकता है। नर नर तो नरक ही बनाता है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है, बड़े से बड़ा कोई बुलंद नर आया हो, मनुष्य आया हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह आए हो, जिनके नाम की बुलंदगी संसार में बहुत है, वो खुद भी पतन के गर्त में गिर गए और सारी दुनिया भी मेंटेलिटी से एकदम नीचे गिर गई, यहां तक गिर गए कि जिस डाली पर बैठते हैं उसी डाली को काटने लग पड़ते हैं, जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम बना करके रखते हैं। तो बताया अंत में जब महावाणी महाभारत युद्ध होगा तो शास्त्र में जो कौरव पांडवों की लड़ाई दिखाई है वो नहीं है, और पांडव लड़ाई नहीं है, क्योंकि पांडव तो लड़ते ही नहीं है, एक लड़े और एक न लड़े तो लड़ाई होगी, दो हाथों से ताली बजती है। वास्तव में अपने धर्म की कट्टरता को लेकर के ये कौरव कांग्रेसी और ये मुसलमान लड़ेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा, यवनों की लड़ाई होती है, पांडव कोई लड़ाई नहीं करते, ओम शांति।